ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਾਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਾਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਰਹਾਉ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਉਡਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਰੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ गुरु पातशाह जी की निवाजी हुई इस महान धरती ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो बख्शिश होए फरमान नूं बड़े प्यार सहित सुनन लई विचारन लई जुड़ बैठे सतसंगी जनों गुरु पातशाह जी ने बहुत निवाजशां इस धरती उत्ते वरताईआं हन जिस धरती दे नाल आप जी मन करके बहुत सारे तन करके जुड़े हुए बहुते तन करके बहुत सारे मन करके भी जुड़े तो गुरु पातशाह जी ने रूहानीयत दे सोमे मानवता दे केंद्र सिखी दे धुरे सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो जो फरमान जारी किया आप जी ने भाई साहब जी पासों उस पवित्र शब्द का पाठ सुनिया सुरत टिका के एकाग्रता सहित बाणी सुनने वाले गुरसिख जो एक एक अखर नूं टिकाओ नाल सुनदे आ ते गुरु के बचन सुते सीधी सुरत दे अंदर वसदे जांदे आ गुरु बचना नूं समझण वास्ते ज्ञान विद्वता एक साधन जरूर है पर जिन्नी सुरत की एकाग्रता होएगी जिन्ना मन का टिकाओ होएगा बहुत कुछ वो सोझी विच पैंदा शायद किसी विद्वता दे विचों ना मिलिया होवे नकारिया नहीं जा सकता ज्ञान नूं विद्वता नूं पर जदों गहरी सतह दे उत्ते सुरत टिकदी है कई वारी ऐसे भेद सतगुरु जी बुझाउंदे ने जिहड़े दुनिया दे ज्ञान ते संसार दी विद्वता दे विचों खोजिया भी नहीं लभदे और एक होर बेनती तुहाडे चरणां च कि बाणी दी विचार एक सतह उत्ते नहीं कीती जा सकती जां बाणी दी विचार हर मनुख एक सतह ते नहीं कर सकदा आप अपनी बुद्ध है जेती जिन्नी कु गहराई है समर्था है जिन्नी गहराई विच चुभी मारन दी जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विख है समुंदर दे अंदर बहुत कुछ है बहुत कुछ जिहड़ा किनारे दे खड़ा है वह समुंदर दियां छलां वेख के परत आउंदा बीच उत्ते बैठ के नज़ारे वेखदा उच्चियां उच्चियां छलां आउंदियां ते छलां नूं वेख के मन परच जांदा उस नज़ारे नूं वेख के दो घड़ियां चार घड़ियां फिर घर परत आउंदा सधारण मनुख एक जीव है किनारे उत्ते बैठा छल आउंदी है ते कुछ जंगली जीव बाहरले रेते विच रह जांदे ने पानी अंदर उतर जांदा वो जीवां नूं चुगदा ते अपना ढिड भर लैंदा बगले आदिक बहुत सारे जीव ने जिहड़े समुंदर दे कंढे उत्ते बैठे अपना आहार लभ रहे एक जीव है हंस वो चुभी मारदा गहरी चुभी मारदा ते समुंदर दी सतह विचों मोती भी चुग लैंदा सतसंग हुण जदों चर्चा चलेगी ते तीनों ही आपो अपनी विचार देणगे छलां नूं वेखण वाला कहेगा समुंदर विच पाणी ही पाणी है बस उन्हें पाणी ही वेख्या है डड्डा मछियां चुगण वाला जीव कहेगा समुंदर दे विच मेरी खुराक है वो अपनी सोच करके उत्थों तक सीमित है ते गहरी सतह विच चुभी लाउण वाला हेठां उतरन वाला डूंघी सतह विच जाण वाला वो कहेगा नहीं उत्थों मैनूं मोती भी मिले ने हो सकता तीनों तर्क भी करन के मैं सच्चा हाँ दूजा कहे नहीं मैं सच्चा हाँ इस तरह गुरु के सिखो बाणी दे अंदर बहुत गुझे भेद हैं जिते केवल असी गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग नूं वेख्या सतगुरां दे पीड़ा नूं वेख्या रुमाले वेखे ते असी नमस्कार कीती वध तो वध थड़ा साहब नूं टच कर लिया उहदे तो अग्गे पहुंचे ते असी गुरु साहब जी दे पीड़े दे पावे नूं टच कर लिया छू लिया ते फिर असी मत्था टेकिया इधर उधर नूं ते घर नूं परत गए दर्शन कर रहे कुछ गुरसिख ने बैठ के सुन रहे ने बड़े भेद निकल रहे वो बुद्धि की पकड़ विच लैंदे सब कुछ कुछ गुरसिख इस तों अगे हिरदे की सतह विच उतारन वाले ने
ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭੇਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਫਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜਲਾਦ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਵੈਰੀ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੱਕਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗਹਿਰੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਛੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਡੱਡਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ, ਮਰਜੀਵੜਾ ਹੰਸ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਦਾ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ, ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ। ਮਰਜੀਵੜਾ ਕਿਹਾ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਰਜੀਵੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਰਤਨ ਚੁੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਗਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਛੁਪਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ। ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਕਛੂ ਕੱਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਸਤਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਤਿਆਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਰੱਜ ਜਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਕੱਲੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜੂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਭੋਜਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਰਸ ਭੋਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਉ ਦੀ, ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ? ਜੀਵਤ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੂਖਮ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਭ ਮਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਮਰਨਗੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਬਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਧੜਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने मर गया होया बाणी दी कसौटी उत्ते। पिंडां दे अंदर साडियां बजुर्ग मावां जिन्हां नूं डाक्टरी साधना की सोझी नहीं सी हुंदी ते उह चेहरे का रंग वेख के ये अंदाजा ला लैंदियां सन कि मौत हो गई, स्याह हो गया चेहरा, काला हुआ स्याह, हजूर ने बाणी च कहा। तो यह भी शब्द सुन नूं मिलदे हुंदे सी कि नक टेढ़ा हो गया, ये जिंदियां खड़ा है, जदों मौत हो गई थोड़ी जी इहदी कुरंबली विंगी हो जांदी। तो सियाने दाने कहिंदे सी मौत हो गई। गुरु साहब जी कहिंदे ऐन तिखे नैन नक्श ने, सोहना सुनखा है, चेहरे की रंगत कायम है, जुबान दे बोल बड़े सियाने ने, बुद्धि बड़ी प्रबल है, पर जे गुरबाणी की कसौटी ते परख के वेख्या ते मर गया होया। बचन साहब ने कहा बाणी च अत सुंदर, सारे गुण ने, अत सुंदर ऐन दगदा करदा चेहरा, कलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, सब पासियों निपुण, ज्ञान दियां गल्लां, सियाणा बुद्धिमान। पर जदों बाबा जी ने मोहर लाई मेरे सतगुरु जी ने, हजूर ने कहा मृतक कहिया नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत, वाहिगुरु जी का प्यार नहीं ते तेरा सुहापण, तेरी सुंदरता, तेरी चतुराई, तेरा धन, सब कुछ खेह दे बराबर, तेनू गुरु ने मुरदिया की गिनती विच रखिया। आखां जीवां ते जे नहीं आखदा विसरै मर जाओ। मुरदे बहुते ने, जिंदे थोड़े ने। साध संगत, शरीर करके सारिया ने मरना है, जमीर करके बहुते मरे हुए हैं। एक तीसरी मौत है, उन्होंने भी महाराज ने मरना क्या, जिन्हों साहब कहते ने मोहे मरने का चाव है, जिस मरने का जिक्र करदे आ सतगुरु जी कहते ने ऐसा मरो जित बहुर ना मरना, ऐसा मरो। जिन्हां नूं असीं कौम दे शहीद कहिंदे आं, जिहड़े अपना आपा कुरबान करके मौत विच्चों जिंदगी भालदे ने, जिन्हां दियां अखां विच्चों मौत दा खौफ मुक जांदा, जिन्हां दे उत्ते असीं फखर करदे आं, ते ओह उन्हां दे वास्ते प्यारे बोल किसी अदीब ने लिखे, जब से पता चला है मरने में है जिंदगी, सर पे कफन बांध के कातल को ढूंढते हैं। मौत विच्चों जिंदगी भालण वाले सूर में उन्हें भी सतगुरु जी ने मरना क्या है। गुरु की दित्ती हुई मत दे अनुसार निज नू मारना, ते सच्चे साहब जी कहिंदे जिन्हां ने जिंदे जी इस मौत नू अपना लिया उन्हां नू फिर कभी मरना नहीं पैंदा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, इनू सद जीवन क्या, सद जीवन। दुनिया की कोई ताकत उन्हां सूरमियां नू मिटा नहीं सकती जिन्हां ने शब्द की कमाई करके जिंदे जी अपने आप नू, अपनियां वासनावां नू, अपने अंदर दियां तृष्णावां नू। शहीद किनू कहिंदे आ, जिन्हें निज जित लिया, आत्म जनै। संसारी बंदे दियां वासनावां उन्हूं मोह वाले पासे धकेल दियां, जिन्हें मोह जित लिया, जिन्हें वासनावां जित लिया, जिन्हें तृष्णा जित ली है, वह त्याग ते कुरबानी दे राह ते तुर के भावें शरीर मिट जाए भावें शरीर जिंदा रह जाए, वह अमर शहीद हो जाता जिंदे जी भी। पंथ के अंदर अमर शहीद भी मने गए, जिंदे शहीद भी मने गए। साध संगत, बकायदा उपाधि दी गई पंथ वालों, श्री अकाल तख्त साहब जी वालों। सिख इतिहास में दो शख्सियतों को श्री आनंदपुर साहब की धरती उत्ते खालसा पंथ वालों सरहंद जित के पहाड़ी राजियां नूं सबक सिखा के बाबा दीप सिंह जी नूं इतिहास में सब तो पहला जिंदा शहीद की उपाधि दित्ती, ते फिर श्री अकाल तख्त साहब जी वालों भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा नूं जिंदा शहीद की उपाधि दित्ती। वासना नूं जित के ते मौत नूं तस्लीम कर लैना, इहनूं कहिंदे आ मरन तो पहला निज नूं मार लैना। ये तां हुंदा जे अंदर शब्द की कला वरतदी होवे, मौत का खौफ तां मिटदा जे अंदर शब्द की कला वरतदी होवे। उन्हां लई एक उपाधि है, उन्होंने शहीद का रुतबा दिता गया। इन साहब कहिंदे ने सद जीवन, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरन ना होई। महाराज कह रहे ने जीवना हर जीवना, किहड़ा जीवन महाराज? सच्चे पातशाह जी ने बचन कहा से जीविया, कौन जिंदा है इत्थे? बहुत ही जड़े असीं वेखदे आं लाशां तुरियां फिर रहियां, लाशां गुरमुखो ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਏ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜੂਣ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਜੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜੀਵਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਰਸ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ। ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੂਣਾ। ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਲਵੋ ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਉਹ 1915 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 100 ਸਾਲਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਸ ਸਕੇ। 30 ਵਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਲੈਦਾ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ 50 ਵਰੇ ਜੀ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ 100 ਵਰੇ ਜੀ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਮਰਜੀਵਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਵਜੀਦੇ, 7 ਸਾਲ ਜੀਕਰ ਵੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਜੀਉ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਜੀਕਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਸਰ ਕੌਮ ਸੇ ਬਚਾ ਕਰ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਸੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਆਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੂਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, उस जीवन विच कदी मौत नहीं व्यापदी साध संगत अमर पदवियां प्राप्त होंदिया अमर पदवियां। तो सच्चे पातशाह जी ने जो अज बख्शिश की है जीवन की जो सोझी दे रहे ने एक पासे दुनिया के भोग विलास ने दुनिया के सुख साधन ने असी उन्हों जीवन समझी बैठे हाँ एक पासे साध संगत परमेशर के नाम का रंग है आत्मक जीवन है सतगुरु जी इनू जीवन की पदवी देंदे है जो बचन साहब जी ने संपूर्ण शब्द विच बख्शे ने अरदास करिए महाराज सिर ते हाथ रखन समत दे के अगाध बोध बचना की सोझी दे के अपनी पावन पवित्र शब्द की अकथ कथा सतगुरु करवाउण असीस दियो प्यार विच जुड़ के एक बार सारे सिमरो जी सतनाम श्री वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवा त्रिपत भाई सच भोजन खाया
त्रिपत भाई तृप्ति संतुष्टि भुख मिट जानी सात संगत जदों असी तृप्ति की गल करांगे ते भुख की गल करांगे साडा ध्यान शरीर वल जाएगा क्योंकि साडे जीवन का नित का कर्म आ ढिड की भुख मिटाउणी इत्थे गल्लां दो कहियां महाराज ने तृप्त ते सच भोजन जदों असी शरीर की गल करांगे सानू प्रशादा चेते आवेगा सानू पदार्थ चेते आउणगे जदों सच की गल करांगे फिर साडा ध्यान आत्मक जीवन वल जाएगा क्योंकि सच आत्मा की खुराक है भोजन प्रशादा ये साडे शरीर की खुराक है सच साडे जमीर की खुराक है जिस जिंदगी विच्चों सच मिट जाए वह जमीर मर जाती है शरीर भावें जिंदा रहे जिस जिंदगी विच्चों सच मिट जाए वह भावें दुनिया का शहनशाह बन जाए कभी तृप्त नहीं हो सकता ये भुख नूं मिटाउण वास्ते साहिब कहिंदे बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत ए मन तन तृपी है तृपण शब्द का अर्थ भी तृप्त होना रज जाना सच नाल जुड़ सच की कमाई कर तैनूं आत्मक जीवन मिलेगा कला शरीर के जीवन की सतह ते ना जू कला शरीर वास्ते ना तरले मार शरीर के अंदर कोई जोत भी जग रही है शरीर के अंदर जमीर नूं भी जिंदा रख एक तीजी बेनती इसे गल च एक शरीर एक जमीर एक तीसरी बेनती मैं तुहाडे चरणां च करनी चाहुंदा तृप्ति कदों हुंदी है जदों सच मिल जाए बाहरी तौर दे उत्ते मेरी बेनती नूं समझो चंगी तरह भोजन का संबंध शरीर नाल सच का संबंध जमीर नाल तीसरी जिहड़ी मैं गल कह रहा किसी गल प्रति साडे मन च शंका होवे ते असीं कहिंदे आ तसली कदों होएगी जदों सच का नितारा हो जाएगा ये तीजा अर्थ मैं बहुत ही अर्थ करके तुहानूं चक्करां च नहीं पाउणा चाहुंदा ते ना अपनी विद्वता दसनी चाहुंदा पर इस पक्ष नूं भी समझण दा थोड़ा जिहा यतन करियो कई वारी असीं चाहुंदे आ जी साडी तसली नहीं होई साडी तृप्ति नहीं होई जिज्ञासा अंदर होवे किसे गल प्रति साडे जेहन विच शंका होवे ते असीं कहिंदे आ जे सच नित्तर के सामने आ जाए फिर साडी तसली हो जाएगी ये तृप्ति का अर्थ भी इत्थे इही है जे असीं इस पहलू नूं विचारीए गुरु के सिखो आप जी के चरणों च एक बेनती करनी चाहुंदा कि इस सच नूं अपने जेहन विच वसाउणा कि सचखंड हरिमंदर साहब शांति का घर है सारे मनुखां वास्ते वैरियां वास्ते भी दरवाजे खुले ने बहुत सारे शंके पाउण दा यतन किया जा रहा है मैं गुरु घर का चौकीदार होने के नाते जे थोड़ी जी इज्जत भी तुसी दिंदे हो ना तो सुची भावना नाल एक बेनती करदा जिस तरीके नाल शंके पाउण दा यतन किया जा रहा है सच नूं जानन दा यतन करो तो अपने अंदरों शंके मिटा दिओ तृप्त उदों होवांगे जदों सच का नितारा होएगा जे असी लाई लग बन के गल्लां सुनते रहे थोड़ा जिहा इशारा मेरा कल वापरी घटना वाल है साडे अंदरों शंके नहीं मिटणगे तृप्ति कदों होएगी तसली कदों होएगी जदों सच उजागर होएगा हाथ बन के एक बेनती करता कौमी पीड़ा च एक दूजे सिख की नीयत से शक करन दा यतन ना करिए। जदों असी अपने आप नूं वड्डे धर्मी साबित करदे आ ना तो मैनूं नाल बैठे की नीयत से शक हुंदा है ये माड़ा है, मैं सच्चा धर्मी हाँ। तो जदों हंकार आएगा उदों तकरार पैदा होएगा, उदों सिखी का नुकसान होगा। गुरमुखो कोई थोड़ी सेवा करता उहदी इन्नी प्रवान। भाई बलाका सिंह सुनेहा लैके चलिया गया, बुढ़ा जौड़ तेरा धनवाद सिखा, तू आया है तेरा शुक्र है, तू आया तो है ना सुनेहा लैके। जिनी कु सेवा जिनी कु भावना उहदी कदर करन दी जात सिखीए फिर सच उजागर होएगा। हंकार साडियां अखां ते पर्दा पा दिंदा है कि असली सिख मैं हाँ, ये जड़ा इत्थे सेवा निभा रहा इहदी ते नीयत उत्ते मैनूं शक है ना। भाई गुरसिखो ना, आत्मक नुकसान भी होएगा, कौमी नुकसान भी होएगा। असीं निजी तौर पर भी उजड़ांगे, कौमी तौर पर भी उजड़ांगे। तृप्ति कदों हुंदी है जदों सच साडियां अखां सामने होवे, जदों सच साडे जेहन विच जावे। तृप्त भई सच भोजन खाया। इस वास्ते जदों भी यतन करना हाँ, शरीर की सतह लई तुहानूं प्रशादे की लोड़ है, वरतो। पर जदों अंदर कुछ असीं पहुँचाना चाहते हाँ तो कदी कूड़ की टेक ना लो, केवल सच का सहारा लो, सच का। इहदे नाल तृप्ति होएगी। दुनिया के कूड़ का आहार करने वाले इधरों निंदा सुन ली कन्ना दे विच, पता नहीं की पाया जा रहा है। निर्णा करन दी हिम्मत पैदा कर अपने अंदर सिखा। जे सारा कुछ सुनदा गया तो इस कटोरे के अंदर निंदा का ही हाड़ आ जाएगा। इहनूं बिखिया कहिंदे ने, महाराज ने बाणी च बचन किया, अनक भोग बिखिया के करै नह तृप्तावै। इत्थे कहिंदा तृप्त भई सच भोजन खाया। कूर रूपी आहार करन वालिया तैनूं तृप्ति कदी नहीं आउणी, तेरी निशा कदी नहीं होनी, कदी भुख नहीं मिटनी। तृप्त भई सच भोजन खाया, अनक भोग बिखिया के करै नह तृप्तावै, खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज है। ये तो सुपने की न्याई, फिर जो कुछ भज्जा फिर रहा सब झूठ। सुपना की है सच जाप रहा पर जदों अखां खुलियां तो झूठ। असलीयत दा सच दा सौदागर बन। वाब रोले उठदे, आत्मक तौर पर भी नुकसान हुंदा, कौमी तौर पर भी नुकसान हुंदा। गुरसिखो सच्चे पातशाह महाराज सानू सच दा आहार बख्श रहे है। वो सच परमेशर रूप विच भी है ते वो परमेशर समाज के अंदर भी वरत रहा, इस सृष्टि के अंदर भी वरत रहा। असीं इत्थों भी सच चीनना है, असीं आत्मक तौर पर भी सच अपनाउणा है, फिर साडी तृप्ति होवेगी, फिर साडी निशा होवेगी। भावें वह रूहानी जीवन है, भावें वह साडा संसारी कौमी जीवन है। हाथ जां बन बेनती है कि सच दे सौदागर बनीए, कन्ना दे अंदर कूड़ ना पैण दी है। ये सानू आत्मक तृप्ति देवेगा।
मन तन रसना नाम ते आया।
हाँ, मन करके ते तन करके इस जेबा नू वाहेगुरु सिमरन दा रस आना शुरू हो जाए। ये रसना वाकई रस लै सके, दुनिया के झूठे भोगों वाले पासे गलतान ना होवे। जदों इन्हों नाम का रस आएगा इहदे अंदर तृप्ति आएगी। सतसंगत सिख इतिहास में जिक्र आता है जन्म साखियों के अंदर, धन गुरु नानक हजूर के दर्शन करने वास्ते दो सिख आए, भाई खेडा ते भाई सहरा। गुरु हजूरी अंदर आए गुरु दरबार गुरु नानक के घर में, अगे बाणी का कीर्तन हो रहा है। जदों घरों तुरे सी ना, बहुत सारिया मंगा सोच के तुरे सी, आ भी बेनती करनी, आ भी बेनती करनी, आ भी बेनती करनी, आ भी मंगना, आ भी मंगना। जदों घरों तुरे सी बहुत सारे शंके लैके तुरे सी, ये शंका भी है मन च, ये भी शंका मन में है। जन्म साखी के अंदर लिखा कहिंदे जदों गुरु हजूरी अंदर आए भाई खेडा भाई सहरा, तो अगे अमृत बाणी का कीर्तन हो रहा है। कीर्तन हो रहा इस वास्ते गल्लां नहीं कीतियां जा सकदियां, शंके नहीं रखे जा सकते। बैठ के पिछे ही बैठ गए, अगे भी नहीं आए। बहुत ही एकाग्रता विच गुरु के कीर्तनीय भिज के कीर्तन कर रहे ने। सुनन वालियां दियां सुरतां रब्बी मंडल विच वरत रही हैं ते इस संगत दा ऐसा प्रभाव पिया जिहड़े खिंडा विचों आए सी ना उन्हां दे अंदर भी एकाग्रता बन गई। इह संगत दा प्रभाव है, मन जुड़ गया कीर्तन दे नाल, सुरत ने ऐसी प्रवाज मारी कि वह संसार वाली सतह तो उपर चले गए। आ जिहड़ी रौले गोले तृष्णा शंकियां वाली सी इहदे तो बिल्कुल उपर उठ गए ते एक अगमी रस बन गया। इस विस्मादी जिहा आनंद वरत्या, लंबा समा कीर्तन होया, शरीर की सुध भुल गई, आलस दलिद्र शरीरक भुख शंके मन के सब विसर गए ते उस प्रेम रस विच वह अकह आनंद विच इन्ने लीन होए कि समा भी विसर गया। कदों दे बैठे जदों कीर्तन की समाप्ति हुई बड़ा रस बनया। ये शब्द मैं इसलिए वरत रहा भी मैं वो दस नहीं पा रहा कि किस तरह का रस सी, और मैं ये कहना पड़ेगा मेरे शब्द मुक गए पर मेरे अंदर की तसली नहीं हुई भी मैं दस सकता भी वह रस किस तरह का सी जिहड़ा भाई खेडा ते भाई सहरा ने माणिया। कीर्तन की समाप्ति हुई तो अंतरजामी दाता सतगुरु जी ने गुरु नानक जोत विराजमान पूछया, कहिंदे भाई दसो तुसीं आए हो, ये भी गुरु की एक रमज सी की मनसा है। तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए कहिंदे सच्चे पातशाह मनसा तो बड़िया सन, बहुत वड्डी पंड चुक के लियाए सी आसा मनसा की भी तो मन के शंकियां की भी, पर सच्चे साहब जी जदों कीर्तन दे नाल सुरत जुड़ी जदों रस आया तो जो कुछ लैके आए सी ना शंकियां दी पंड वाशनावां दी पंड मंगां दी पंग वो सारी भुल गई। हुण तो इक्को जी करदा भी महाराज एक कृपा करो जे पुछण ही लगे हो ना तो फिर जिहड़ा रस हुण घड़ी को पहला बनिया होया सी ना वो रस सदा बनिया रहे ये कृपा कर दे। तृप्त भई सच भोजन खाया, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। देखो ये ध्यान दो ये नाल, पहला सानू लगता सी भी आ चीज़ा की लोड़ है, ये तो बिना नहीं सरदा, आ शंके ने ये तो बिना नहीं गल बनती, तो जो ये बाणी का रस लिया वो सारा कुछ ही भुल गया। तो जे हुण पुछण ही लगे हो महाराज तो जड़ा रस ये बनया सी ना अज बनया साढ़े सिर ते हाथ रखो, ऐसी कृपा करो होर मंगिए कख ना ये रस सदा बनया रहे। इहनू कहिंदे तृप्त भई सच भोजन खाया। तो मेरे दाता जी ने बचन कहे कहिंदे भाई खेडा भाई सहरा ये शंकियां दी निवृत्ति ये वाशनावां दी निवृत्ति पता कदों बनी, जदों तुसी शब्द नाल जुड़ गए। शब्द का प्रवाह चल रहा सी, सुरत ऐसी जुड़ी शरीर की सुध भुल गई। ये रस का भेद ही है कि जदों सुरत शब्द नाल जुड़ जाए उदों वाशनावां तृष्णावां का चेता ही नहीं रह जाता, तो जे निरंतर जुड़े रहोगे रस निरंतर बनिया रहेगा, जे टुट जावांगे तो फिर उस खलजन च डिग जाएंगे। जिन्हों लिव कहिंदे ना लिव, ये उन्हां प्यारियां दी अवस्था लिव दा अर्थ है रैगूलर जुड़े रहना निरंतर जुड़े रहना। महाराज कहिंदे आ भेद है, इहनू महाराज सच्चे पातशाह बयान कर रहे ने कि मन तन शीतल हो गया संतोख आ गया जदों ये रसना जेबा ने हिरदे अंदर नाम वसा दिता।
जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग,
असल चो रजियां हुई आत्मा ही जीवत हैं। यह सच्चा नाम भोजन है जिन्हें भुखा मिटाउणी, थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, थाल मौजूद है ये अंदर सत है सत जिन्हें शंके मिटाने हैं, ये अंदर संतोख है जिन्हें तृप्ति देनी है, ये अंदर विचार है जिन्हें सानू इंसानी सतह से उच्चियां चुकना है। जे विचार ना हो असी तो पशु ही हाँ, इनू जीवन जीवन क्या सात संगत। जे चीज़ा साढ़े अंदर चलिया गई ना, जे को खावे जे को पुंचा फिर असी जीवत हाँ, ये असली जीवन है।
रहाओ अनेक प्रकारी वस्त्र उड़ाए,
दुनियावी बंदा कहिंदा है भी मैनू सोहने शिंगार मिल जाण मेरा सुहापन सुंदर होवे, इसे गल उत्ते जोर है, पर जड़े नाम दे रसीए ने ना उना वास्ते नाम ही वस्त्र है, नाम ही चोला है। वो तन दे अडंबरां वल ध्यान नहीं दे रहे, अनक भांत दे वस्त्र अनक भांत दा शिंगार उना वास्ते सच्चा नाम ही बन जांदा है।
आन दिन कीर्तन हर गुण गाए,
दिन रात रब्बी कीर्ति करदे ने ते ए नाम रूपी जड़ा चोला है उही उना दा शिंगार बन जांदा है। सत्संगत ते जे नाम नहीं ते बड़े शिंगार कीते। सच्चे पातशाह जी कहिंदे नाम बिना जो पहरा खाए फिर दशा ते कुत्ते वर्गी है, जड़ा झूठ ते झपटा मार रहा है तृप्त नहीं है। नाम बिना एक वेखो, एक पास ये ध्यान देना कि उन्हां दा शिंगार नाम ही बन गया, ते जे नाम नहीं शिंगार बड़ा है फिर तेरी जिंदगी कुत्ते वर्गी है। कल्ला शिंगार कीता नाम नहीं जपया। नाम बिना जो पहरा खाए ज्यों कुकर जूठन मैं पाए, जिमें कुत्ता जूठते झपटद। नाम रसियां दा शिंगार शुभ गुण ते नाम दी प्राप्ति बन जांदा है।
हस्ती रथ आस असवारी,
दुनिया भी बंदे दी लोचा है, असवारियां चंगियां होण। उन्हां समयां च रजवाड़ियां दियां मीरां दियां शहनशाहां दियां सवारियां हुंदियां सी हाथियां ते चढ़ना। अज असीं कहीए कारां जहाज मिल जाण, पर जड़े नाम दे रसीए ने उन्हां दियां कारां जहाज की हुंदे ने अगे दसदे ने।
हर का मार्ग हृदय निहारी,
जना दे हृदय अंदर रब्बी राह वसिया होया ना, मार्ग ते तुरना चरण चलो मार्ग गोबिंद, यही उन्हां दी जिंदगी दी सुखदायक सवारी है। जे गुरमुखो नाम नहीं ते 36 प्रकार दे भोजन खा रहा है, नाम बिना जेता व्यवहार ज्यो मृतक मिथ्या शिंगार, मुरदे दे कफन दे समान है सब कुछ। सो नाम रसियां वास्ते यही जिंदगी दे सुख साधन हन।
मन तन अंतर चरण त्याया,
हृदय दे अंदर इस सुरत दे अंदर वाहिगुरु जी दे चरणा कमलां नूं शब्द है निम्रता दा लखायक। वैसे वो आकार तो रहत है, उहदा स्वरूप की है बाणी निरंकार है, शब्द उहदा स्वरूप है, ते इस शब्द नूं हृदय अंदर त्याउणा।
हर सुख निदान नानक दास पाया,
जिन्हां ने ध्याया उन्होंने सुख निदान पा लिया। सुख निदान, खिमा करियो इत्थे मैं बेनती करदा साध संगत, कुछ लोगों ने ना नशे का नाँ सुख निदान रख लिया। मत जी औली बौली जी हो जाए कहिंदे सुख निदान छकिया, बड़ा अजीब नाँ वरतना शुरू कर दिता। जिहड़ी शैतान बनाने वाली शीशी सी ना शराब, उन्हूं साडे समाज ने एक नाँ दे दिता दारू। दारू का अर्थ है दवाई, जिहड़ी रोग देने वाली सी, जिहड़ी अंदर ते बाहर नूं रोगी करन वाली सी उहनूं दारू कहण लग पे, जिहड़ा मत मारन वाला सी उहनूं सुख निदान कहण लग पे। बड़ी गलत गल कीती गुरमुखो। आ नाम दा रस सुख निदान है। मन तने अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक, हाँ जी
दास पाया,
नानक दास पाया। ये सुख निदान है जिन्हें आत्मक आनंद देना, जीवन के भेद नूं पछानीए साध संगत। अपने आप नूं कोखण दा यतन करिए कि मुरदियां की श्रेणी विच ते नहीं। सो महाराज सारिआं नूं आत्मक जीवन देण, सच की खुराक खाइए, दुनिया के सारे भरम निविरत हो जाणगे, कौम के केंद्रीय स्थानां नाल जुड़िए जिहदे उत्ते सानूं गर्व करन की जरूरत है। आओ इस पंक्ति नूं एक बार फिर पढ़िए जी।
मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।